अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अनुमान है कि अगले साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन 2.8% से बढ़कर 3.6% हो जाएगा। इस पूर्वानुमान से दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के संकट से उबरने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक बन जाता है। पिछले सप्ताह सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को कम कर दिया था और ये पूर्वानुमान ठीक उसी के बाद आया है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवारों के लिए कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं। वाशिंगटन में अपनी वार्षिक बैठक में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचस एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे सभी सुनना चाहते हैं।
Let me start with the good news. The battle against inflation is almost won.
लेकिन इसके बाद जो आएगा वो संदेश हो सकता है जिसे अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई सुनना नहीं चाहेंगे। जबकि IMF ने पूर्वानुमान लगाया है कि अधिकांश देशों में मुद्रा स्फीति कम होगी, ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा स्फीति उच्च ही बनी रहेगी। ये भी अनुमान लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगले साल के अंत तक 2.8% से बढ़कर 3.6% हो जाएगा, जिससे ये अगले साल के अंत तक दूसरे 41 देशों के बीच दूसरा सबसे अधिक मुद्रा स्फीति वाला देश बन जाएगा। मध्य यूरोप में सबसे अधिक मुद्रा स्फीति दर का सामना करने वाला देश स्लोवाकिया होगा, जिसके 2025 तक 4.8% तक पहुंचने का अनुमान है। और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में UK, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसी दूसरी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति बहुत कम होगी, जो कि 2% या उससे कम होगी। स्टीफन स्मिथ डेलॉयट एक्सिस इकोनॉमिक्स के भागीदार हैं। उनका कहना है कि मुद्रा स्फीति वृद्धि को धीमा करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पिछड़ने के पीछे कई कारण हैं।
The first is that Australia was hit later than other countries with the inflation surge, and so it makes sense that it's taking Australia a little bit longer to then get inflation back under control. But the second factor is that, you know, the government in this current financial year has spent quite a lot of money on energy rebates. That's putting some artificial downward pressure on inflation. We would expect that when those rebates come off again next year, that, you know, inflation is going to spike up a little bit.
ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो अगले सप्ताह नवीनतम तिमाही डेटा प्रस्तुत करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने पहले ही दरों में कटौती की धीमी गति का संकेत दिया है, जैसा कि पिछले सोमवार को इसके डेप्यूटी गवर्नर एंड्रयू हॉसन ने कहा। हॉसन ने नवीनतम नौकरी बाजार के आंकड़ों पर भी आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें इसके इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने 4.1% की स्थिर बेरोजगारी दर दर्ज की, जो दर्शाता है कि लेबर मार्केट अभी भी तंग बनी हुई है। ये सब ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक वृद्धि के बारे में और अधिक चिंताएं पैदा करता है, जो 1990 के दशक के बाद से सबसे धीमी गति पर है। डेलॉयट के स्टीफन स्मिथ का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी।
A couple of key things are influencing the Australian economy at the moment. First of all, the global backdrop has deteriorated in the last couple of months, particularly the outlook for China, which is experiencing some quite significant structural challenges. The other big change in our forecast for this quarter is a downgrade in the housing market. We now see fewer than 1 million dwelling commencements in Australia over the next 5 years. That compares to the government's 1.2 million homes target. Both of those things mean that we've downgraded our expectations for economic growth in Australia throughout this calendar year and next.
स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की उत्पादकता को लेकर भी चिंतित हैं। वो बताते हैं कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील नहीं है कि विकास को जारी रखा जा सके।
We've also got at the moment an economy which is increasingly driven by public sector as opposed to private sector activity. You know, those jobs are important in the care sector, for example, in health and education, but they are generally less productive than jobs in the private sector.
ऑस्ट्रेलिया पर आईएमएफ के इस आर्थिक पूर्व अनुमान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। विपक्षी नेता पीटर डाटन का कहना है कि आईएमएफ की ये खबर कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों को भयभीत करेगी।
If the government had put in place the measures in the last three budgets to bring downward pressure on inflation instead of upward pressure, Australian families would already be paying less for their mortgage. And I think the IMF has really rung the alarm bell here to signify that the Albanese government has not a clue what they're doing when it comes to economic management. And that's why inflation is higher here than in every other comparable country. And we're seeing a situation where Australians are paying the price for bad economic decisions by the Albanese government.
आवास मंत्री क्लेयर ओनील ने अपनी सरकार की नीतियों का बचाव किया, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जीवन यापन की लागत के संकट से जूझना पड़ रहा है।
People at home are really struggling with making ends meet and, you know, just in making the dollars add up at the end of the week and the end of the month. And the government's very alive to that. That's why you've seen our government do those really big moves on cost of living, the tax cuts that went to every single Australian taxpayer, $300 in energy bill relief, the work that we're doing around cheaper childcare, around cheaper medicines. All these things are helping, but I just wouldn't deny we really realise that things are really difficult right now and the government's doing everything we can to manage that big macro picture, but also to make sure that at home we're doing everything we can to help you and your family.
फेडरल चुनावों में अब बस कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, ऐसे में जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट दोनों प्रमुख दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने की उम्मीद है। SBS न्यूज के लिए कैथ लैंडर्स और विंग क्वान की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।